मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 15 मार्च 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैं जब टीवी पर गाने सुन रहा था, आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि टीवी पर गाने सुन रहा था। हाँ, टीवी पर भी गाने आते हैं, ये बात अलग है कि वो अपने फिल्मीकरण के साथ आते हैं, अपने दृश्यों के साथ आते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप टीवी के सामने नहीं हैं और टीवी चल रहा है, आप दूसरे कमरे में हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? आप नहीं कहेंगे कि मैं टीवी देख रहा था, आप ये कहेंगे ना कि मैं टीवी पर गाने सुन रहा था। तो कुछ ऐसी ही बात हुई, मैं टीवी पर गाने सुन रहा था तो उसमें एक गीत के बड़े खूबसूरत बोल कानों में पहुंचे और मैंने तुरंत फैसला किया कि नहीं, ये लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। दोस्तों, पंक्तियां थी बहुत ही सामान्य सी लेकिन बहुत ही गंभीर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। फ्रेंड्स, मैंने महसूस किया है कि ये जो कुछ भी लिखा जाता है, चाहे वो गीत हो, चाहे गद्य हो, पद्य, कुछ भी हो, सही अर्थ तो तब समझ में आता है जब हम उन पंक्तियों को पकड़कर थोड़ी उसके गहराई में उतरे। अदरवाइज होता यह कि ठीक है, गाना आपको पसंद भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि गाना जो हमें अच्छा लगता है उसके कई लेयर्स होते हैं। देखिए, पहले गाना कैसे, किसी के मन में कोई विचार उठा या संवेदना जागी तो उसने गीत लिखा, तो हो सकता है कि हमें वो संवेदना अच्छी लग रही हो। फिर उसने उसे शब्दों में ढाला तो हो सकता है कि हमें उसके कुछ शब्द अच्छे लग रहे हो, राइट, भाषा अच्छी लग रही हो। इसके बाद शब्दों में ढालने के बाद फिर उसको म्यूजिक में ढाला गया, सोचिए, तो हो सकता है कि वो म्यूजिक अच्छा लग रहा हो। हम शब्द पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, संवेदनाएं भी हम मिस कर गए हैं, लेकिन म्यूजिक बहुत मजेदार है तो हम उस म्यूजिक का आनंद ले रहे हैं। मित्रों, इसके बाद म्यूजिक बन जाने के बाद फिर उसे आवाज दी गई, साउंड दिया गया, किसी ने गाया, यानी कि किसी ने गाया तो पता लगा कि उसने गाया इतने अच्छे तरीके से है कि आपको उसका गायन अच्छा लग रहा है। जैसे पता नहीं फ्रेंड्स, मैं जब खासकर मोहम्मद रफी साहब की जब आवाज सुनता हूं तो कई बार कुछ गानों में मुझे डिवाइन फीलिंग होती है। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं, मुझे बड़ी डिवाइन फीलिंग होती है, एकदम आध्यात्मिक अलौकिक किस्म का की अनुभूति होती है। और मैं कई बार अपनी पत्नी प्रीति से कहता हूं कि देखो कितने डिवाइन साउंड है, और फिर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके पूरी तरह से उस आवाज में खो जाता हूं। लगता है कि उस आवाज को मैं अपने अंदर उतारते चला जाऊं और इसके बाद उतारा ही रहूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, कुछ समय के बाद गायब हो जाती है। पता नहीं मोहम्मद रफी साहब की आवाज का मैं दीवाना हूं। खैर, तो मित्रों, हमें पता नहीं कौन कौन सी चीज में से क्या उसमें पसंद आ रहा है, या इनका मिला जुला भी कुछ रूप हो सकता है जो पसंद आए। तो होता यह है कि एक गीत में इतनी सारी चीजों का समन्वय होता है कि उसके जो अर्थ है वो गायब हो जाते हैं। मैं जो यहां कहना चाह रहा था दोस्तों, अर्थ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, या यूं कह लीजिए कि म्यूजिक इतना लाउड होता है या गाने की जो लय है वो इतनी खूबसूरत होती है कि सब कुछ हम उसी को दे बैठते हैं, मतलब फिर दिमाग तो रह ही नहीं जाता। इसीलिए ज्यादातर जो हम गीत सुनते हैं दिमाग से नहीं सुनते हैं, गीत हम दिल से सुनते हैं, और जब दिल से सुन रहे हैं तो दिल बेचारा विचार नहीं कर सकता, वो तो केवल सुन रहा है, वो तो केवल नाचना जानता है, बहस करना नहीं जानता दिल। उसके लिए तो उसने ये जिम्मेदारी उसने दिमाग के लिए सौंप रखी, इन दोनों ने अपना अपना बिल्कुल काम का बंटवारा कर लिया है। लेकिन मित्रों, कभी आप जो गीत आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उनमें दिमाग लगा के देखिए। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि दिमाग लगा करके देखने के बाद वो गीत आपको थोड़े से बेकार लगने लगेंगे, बल्कि सच बात यह है, क्योंकि होता यह है ना कि जब संवेदना वाली चीजों पर हम तर्क का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहा जाता है कि संवेदना कम हो जाएगी, क्योंकि तर्क में ये ताकत होती है कि वो यथार्थ दिखाता है और हम कल्पना की दुनिया में घूम रहे हैं, तो जैसे यथार्थ पता लगा तो हमारी कल्पना के जो कोमल रेशे हैं वो बिखरने लगते हैं, तो उसका सौंदर्य गायब हो जाता है, उसका स्वाद भी गायब हो जाता है। लेकिन यहां जो मैं बात कह रहा हूं वो इससे थोड़ी सी अलग है। अलग यह है कि अगर आप उन पंक्तियों पर विचार कर लेंगे और फिर सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस गीत का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप करके देखिए, जो भी गीत आपको थोड़ा सा पसंद आ रहा है उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए और उसके अर्थ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मित्रों, अब ये देखिए कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, बहुत ही सिंपल सा अर्थ है कि ये जो जिंदगी है एक सुहाना सफर है, राइट। यहां कल क्या हो किसने जाना, कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। जब हम लोग चौथी पांचवी की क्लास में जब कविताओं के जो सप्रसंग अर्थ लिखते थे तो लगभग इसी तरह से लिखते थे, मतलब जो कविता की लाइन है उस कविता की लाइन को गद्य की लाइन में तब्दील कर दीजिए, है था ये सब जोड़ दीजिए तो पता लगा कि उसका अर्थ हो गया, लेकिन वो अर्थ नहीं होता है मित्रों। अब आप देखिए कि कहना क्या चाह रहा है, अब थोड़ी सी गहराई में उतरते हैं, थोड़ी सी उतरेंगे। जिंदगी क्या है, जिंदगी एक सफर है। सफर है का मतलब है एक जगह टिकने की चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, जिसको एक दूसरे फिल्मी गीत में कहा गया है, जिंदगी चलने का, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम कि रास्ता कट जाएगा बतवा, ये आपने सुना होगा। तो जिंदगी बेसिकली एक सफर है, एक यात्रा है, लेकिन आगे वो क्या कह रहा है कि नहीं, वो सिर्फ यात्रा ही नहीं है बल्कि वो एक बहुत सुहावनी यात्रा है, वो बहुत सुखद यात्रा है। यानी कि जिंदगी में जो कठिनाइयां भी वो आपको लग रही हैं वो भी सुहावनी लगनी चाहिए, क्योंकि यात्रा अपने आप में सुहावनी ही होती है, बावजूद इसके कि यात्रा के दौरान बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो यही हो जाती है कि हम अपने घर को छोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, हम तो अपने घर के अच्छे खासे आदी हो चुके हैं, भले ही हमारा घर कितनी भी तकलीफ देने वाला हो, कितने भी असुविधाओं वाला हो, लेकिन घर अपना घर तो अपना घर होता है, वहां हम सुखी हैं, बाहर जैसे निकले परेशानियों के दौर शुरू हो गए। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये सफर है लेकिन सुहावना सफर है। याद रखिए, जिंदगी से कभी शिकायत मत कीजिए, जिंदगी से कभी ऊबिए मत और कहीं रुकिए भी मत। नीचे की लाइन क्या कह रही है मित्रों, इससे भी खूबसूरत लाइन है, वो ये है कि यहां कल क्या होगा किसने जाना। आप देख रहे हैं कि जिंदगी एक सुहाना सफर है, बावजूद इसके कि हमें कुछ नहीं मालूम है कि हम कहां जा रहे हैं, कल क्या होगा किसने जाना का यही मतलब है ना। हम कल कहां पहुंचेंगे हमें नहीं मालूम, वहां रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम, हम पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे हमें नहीं मालूम। यानी कि हम एक अज्ञात सफर में हैं, एक ऐसे सफर में हैं जिसके किसी मंजिल का हमें ज्ञान नहीं है, रास्ता भी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा किसने जाना हमें मालूम ही नहीं है। तो क्या जीवन एक अज्ञात की यात्रा है, अज्ञात की ओर की जाने वाली यात्रा है? और मित्रों, हम सब की कमजोरी यह है कि हम सब ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहते हैं। हम ज्योतिषियों के पास क्यों जाते हैं, इसलिए कि हमें बता दे कि आगे क्या होने वाला है, जबकि इसमें कह रहे हैं कि नहीं अज्ञात अज्ञात, क्योंकि सफर का जो आनंद है वो अज्ञात का ही आनंद होता है। आप देखिए कि अगर आप पर्यटन पर जाना चाहते हैं तो कहां जाना चाहते हैं, हम उन्हीं जगहों पर जाना चाहते हैं जो हमने देखे नहीं है, देखी हुई जगहों पर हम जाना नहीं चाहते सामान्यतया, ठीक है कुछ कुछ जगहों को हम रिपीट करते हैं जो हमें बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन ज्यादातर तो वही जगह होती है ना जो हमारे लिए अज्ञात है। अज्ञात को हम ज्ञात करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम अज्ञात को ज्ञात करते हैं तो उसका आनंद अद्भुत होता है। तो जीवन में जो आनंद है वो इस अज्ञात के कारण ही है, इस अज्ञान, अज्ञान मतलब मैं मूर्खता की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। जब जानते ही नहीं और हम यात्रा में लगातार चलते चले जाते हैं तो एक खूबसूरत बात यह होती है कि जो भी हमारे सामने है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सुंदर हो या कुरूप हो, पहली बार है वो, हम उसे पहली बार देख रहे हैं, हमारी पहली बार उससे मुलाकात हो रही है, और यदि पहली बार मुलाकात हो रही है तो निश्चित है कि वो सुहाना होगा, वह सुंदर होगा। अभी तो आप उसके बारे में सही तरीके से कुछ जान ही नहीं पाए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बेकार है, पहले जानिए तो, परखिए तो, व्यवहार में तो आप लाइए, इसके बाद फिर निर्णय लीजिएगा, और जब तक ये सब होगा तब तक आप आगे निकल लेंगे, क्योंकि जिंदगी तो एक यात्रा है, तब तक आप इसे छोड़कर आगे पहुंच चुके होंगे। तो दोस्तों, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, जो आगे आएगा उसे देखा जाएगा। जिंदगी का कितना खूबसूरत फलसफा है, लेकिन ये फलसफा मित्रों कब समझ में आता है? जब हम इन पंक्तियों के अर्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। मित्रों अभी तक आपने जरूर ये गाना सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, सुन रखा होगा। अब आप इस गाने को थोड़ा सा फिर से सुनिए। अब मैंने आपको थोड़ा सा अपने ढंग से अर्थ बताया है, आप अपने ढंग से भी इसका अर्थ लगाइए, इसके बाद फिर आप इस गाने को सुनिए। और अगर आपको सच में गाने में पहले की तुलना में अब ज्यादा मजा आए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी फीस दे दीजिएगा। और मेरी फीस ये होगी कि आप मुझे मेल लिख दीजिएगा छोटा सा कि आपका अनुभव कैसा रहा। अगर अनुभव बेकार रहा है तो आप वो भी लिखने में मत हिचकिएगा, अगर अच्छा रहा तो वो लिखिए लिखिएगा, और ज्यों का त्यों रहा तो वो भी मुझे लिखिएगा, ताकि कम से कम मैं अपने को दुरुस्त तो कर सकूं कि मैं कितना सही सोच रहा हूं कितना गलत सोच रहा हूं। क्योंकि ऐसा तो अब नहीं है कि अगर मुझे कोई चीज ठीक लग रही है या कोई चीज मेरे साथ हो रही है तो वो सबको ठीक लगेगी और सबके साथ वही चीज हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज इतनी मदद आप सब मेरी थोड़ी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।